وقت کے بزرگ ترین علماء اور دانشور کی تشریف فرما ہونے اور معمولی سے معمولی طالب علم بھی اس فرش پر جگہ اور کسی کو یہاں معمولی نہیں سمجھا اس فرش تک نہ پہنچے کتنا ہی معمولی ہو اس فرش پر آنے کے بعد وہ غیر معمولی ہو جائے اب یہ فرش ہے مجلس حسین یہ پہلے میں اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ ثقافت انسانیہ تہذیب انسانی تہذیب بشری پر فلسفیانہ نقطۂ نظر سے غور کرنے والے اور علمی اور تعلیمی نقطۂ نظر سے غور کرنے والے ان نقطوں تک پہنچیں اور دیکھیں کہ خلاصہ تہذیب انسانی کیا ہے اس کائنات میں عالم بشریت میں تہذیب و ثقافت کا معیار مٹ چکا ہوتا اگر یہ مجلس سے نہ ہو ان مجلسوں کو معمولی نہ سمجھیں ان مجلسوں سے دشمنی نہ کریں یہ مجالس آبرو بشریت ہیں یہ جلسے یہ مجلسیں شرافت انسانی کا حوالہ ہیں یہ کائنات مردہ ہے مردار ہے بشر یہ کائنات مردہ ہے مردار ہے بشر دیتی ہے زندگی کی رمق مجلس حسین
سلامات
ذات الملك عزيز القدر وعظيم القدر دان كلام چیف جسٹس صاحب دانش کرنا ہے Thank you. करते, इसलिए जुदा वो चीजें होती हैं जिनमें दूरी पाई जाए। वहदत है यहाँ कामिल, वहदत है, दूरी का शाहिबा भी नहीं है। अगर दूरी है तो एतबारी, दूरी है तो बस इस्म और मुसम्मा की दूरी है, कुरान इस्म है ये मुसम्मा है, कुरान नाम है ये साहिब नाम है।
एक खुतबे में आपने जुमले कहे,
اقتدار پسند. یہ موقع وہ تو نہیں ہے کہ خالص ادبی انداز میں صرف ادبی بحثیں کی جائیں، مگر آپ اندازہ کیجیے ان میں سے ہر فقرہ الگ الگ ایک گوہر شاہوار ہے. ہر جملہ تنہا لکھا جائے تو ایک کتاب ہے، اور مسلسل پڑھا جائے تو ایک خطبہ ہے، ایک خطاب ہے، اور کہیں تکلف اور تصنع کا شائبہ بھی نہیں پیدا ہوتا. ایسا لگتا ہے کہ خطیب نے مسلسل چند جملے کہے ہیں، اور اگر توجہ رکھیں تو پھر ان جملوں میں ترتیب کے ساتھ مضمون کا ارتقا ہے. مثلاً اتنے اسی فقرے پر رک جائیں، بھائی حضرت حمد الہی اور ثناء پروردگار کے بعد نعت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تعلیم کے لیے، انسانوں کی تہذیب کے لیے، تہذیب فکری، تہذیب اخلاقی، تہذیب ذات، تہذیب عمل، معاشرے کی تہذیب، اس تہذیب و تثقیف کے لیے، ثقافت سکھانے کے لیے، تربیت کے لیے آپ نے یہ جملے فرمائے، جس میں تعلیمی اور علمی مسائل اور حقائق سموئے ہوئے ہیں. فرمایا کہ دراست العلم لقاح المعرفہ. اس کے بعد دوسرا فقرہ اس مضمون کو آگے بڑھاتا ہے. تیسرا فقرہ مضمون کو اور آگے بڑھاتا ہے. آپ ان تینوں فقروں پر غور فرمائیں. یہی تین فقرے درمیان میں سے خطبے میں سے یہ تین فقرے لے لیے، دراست العلم لقاح المعرفہ، وطول التجارب زیادۃ للعقل، والشرف التقوى. جو بے عمل، بے کردار لوگ ہیں ان کے لیے یہ ترتیب شاید قابل فہم نہ ہو. جن کا صرف مادی رجحان ہے ان کو شاید یہ بات سمجھ میں نہ آئے کہ اس میں مضمون کا ارتقا کیا ہے، اور اس میں صدر کلام اور ذیل کلام، یعنی ابتدائے کلام اور انتہائے کلام میں ربط کیا ہے، ربط کیا ہے، تسلسل کیا ہے، تعلق کیا ہے، ارتقا کیا ہے، کون سا نقطہ کس نقطے سے مربوط ہے، سمجھ ہی میں نہیں آئے گا. کیونکہ آج دنیا میں تعلیم حاصل کی جاتی ہے کس لیے؟ پیسہ کمانے کے لیے، انسانیت کا سر بلند کرنے کے لیے نہیں. یہ کسی کو تھوڑی فکر ہوتی ہے کہ ہم علم حاصل کریں گے تاکہ ہمارا مرتبہ انسانی بلند ہو، بحیثیت انسان ہمارا قد بلند ہو، بحیثیت انسان ہمارا سر بلند ہو، بحیثیت انسان ہمیں عزت و آبرو نصیب ہو. نہیں، ہمیں بحیثیت انسان عزت و آبرو نصیب ہو یا نصیب نہ ہو یہ تو موضوع ہے ہی نہیں، دور دور تک کہیں حاشیہ خیال میں بھی نہیں ہے. تمام کوششیں اس لیے، سائنس، ٹیکنالوجی، ایجوکیشن، سب صرف اس لیے ہے کہ ہم کس طریقے سے مال جمع کریں، کس طریقے سے دنیا کو اپنے زیر اقتدار لے آئیں، چاہے ظلم کرنا پڑے، ستم کرنا پڑے، غصب کرنا پڑے. ظلم کو اپنی بلندی کا وسیلہ سمجھنے والے تقوا کو شرف کیسے سمجھیں گے؟ دنیا میں نظام تعلیم اور تعلیمی کلچر یہ ہو گیا، ایجوکیشنل کلچر कल्चर ये हो गया है, ये तालीम जो है जॉब ओरिएंटेड है, तालीम जो है वो सिर्फ पहले जब आप बच्चे को किंडरगार्टन और केजी और नर्सरी या क्लास वन में एडमिट करते हैं ना, एडमिशन देते हैं, तो उस वक्त ये फिक्र होती है कि ये बड़ा होकर किस कंपनी में क्या बनेगा, कितना कमाएगा। हम मुहम ये है ना, और उसमें एक अजब कश्मकश है जो पहले से माशाल्लाह अल्लाह ने सरफराज किया है। साहिब दौलत लोग हैं, उनके बच्चे एक स्कूल में जा रहे हैं, उसी खानदान के कुछ और लोग हैं बच्चे हैं, लेकिन वो दौलत में उनके बराबर नहीं है। अब उन्हें ये एक हसद होता है, तकलीफ होती है, उनके बच्चे उस स्कूल में जा रहे हैं, मेरे बच्चे तो उस स्कूल में जा नहीं रहे, तो क्या होगा, हमारी तो दुनिया तारीख हो गई, हमारा स्टेटस कहाँ रह गया। उनका बच्चा उस स्कूल में जा रहा है, मेरा बच्चा तो उस स्कूल में नहीं जा रहा है, और जब उनका बच्चा उस स्कूल में जा रहा है तो पढ़ने के बाद भी वो कहाँ पहुँचेगा, हमारा बच्चा तो वहाँ जा नहीं रहा है तो फिर वो कहाँ पहुँचेगा। मसला था बच्चे की तालीम का, जिसने हसद के तनूर रोशन कर दिया। ये सब किस लिए? इसलिए कि एजुकेशन वसीला है सिर्फ पैसे कमाने का, और जब पूरी दुनिया का ये एजुकेशन कल्चर हो जाए तो फिर ये बात कैसे समझ में आ सकती है कि कुरान मजीद ने भी कहा, अल्लाह सुभानहु व तआला ने कहा है, तुम तक्वा इख्तियार करो, हम इल्म देंगे। जिनके यहाँ इल्म और किरदार का रिश्ता है ही नहीं, इल्म और पैसे का रिश्ता है, इल्म और किरदार का रिश्ता कैसे कंसीव कर सकते हैं? और जब ये जुमला समझ में नहीं आएगा तो वो शख्सियत कहां समझ में आएगी जो जुमला कह रहा है। सुनो कि हुसैन जिन लोगों की समझ में नहीं आए, क्यों समझ में नहीं आए? सदी कहलाती है, इंफॉर्मेशन की सदी कहलाती है, साइंस की सदी कहलाती है, टेक्नोलॉजी की सदी कहलाती है, इर्तिका की सदी कहलाती है, इस सदी में मुसलमान को हुसैन समझ में नहीं आते। क्यों समझ में नहीं आते? सरकार सैयद शहदा की बात पर खताकार नहीं है, मंतक तो खता से बचाती है, इल्म मंतक की तारीफ में ये खतरा आता है कि मंतक वो इल्म है जिसके वसूल और कवायद की रियायत फिक्र इंसानी को गलती से बचाती है, ठीक है ना, मंतक गलती से बचाती है, यानी जो और जो जो शय जो चीज किसी को खता से बचाए वो खुद खताकार नहीं हो सकती, खताकार किसी और खताकार को खता से क्या रोकेगा। जो खुद खताकार हो वो किसी खताकार को खता से रोकेगा भी तो किस मुंह से रोकेगा? इसीलिए हम مقدس کا فلسفہ ہو گیا، عقل کی تقسیم، عقل کی قسمیں، عقل کے مراتب، عقل فعال کیا ہے، عقل ایولانی کیا ہے، عقل انسانی کیا ہے، عقل بالقوا کیا ہے، عقل بالفعل کیا ہے، عقل مستفاد کیا ہے، یہ عقل کے مراتب کیا ہے، یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آئے. آج کی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ بہتوں کی اب بھی نہیں سمجھ میں آ رہا. آپ کی پاکیز یہ نفس یا آپ کا شرف کہ آپ ذکر حسین سن رہے ہیں اور مکتب حسین میں درس اخلاق اور درس قرآن حاصل کر رہے ہیں، آپ کا شرف ہے. ان جملوں میں جو مقصد ہے ایک تسلسل ہے، ایک ارتقاء ہے مضامین کا. پہلے سبق پڑھنے پڑھانے کی بات ہوئی، اس کے بعد عقل میں زیادتی کی بات ہوئی، وہ بھی تجربوں کی زیادتی کے ساتھ. یہ ابھی معصوم کی بات نہیں ہے، یہ عام انسانوں کے لیے درس ہے. یہ عام انسانوں کے لیے فرما رہے ہیں حضرت کہ دیکھو تم جتنا علم حاصل کرو گے محنت سے، گھوٹ کے جتنا علم کا شربت نوش جان کرو گے، تمہاری چشم معرفت کھلے گی اور جتنا تم تجربہ کرو گے اتنی تمہاری عقل پروان چڑھے گی. اور علم حاصل کرنے اور چشم معرفت کے کھلنے اور عقل کے پروان چڑھنے سب کا ثمرہ کیا ہے کہ دیکھو تم خطرات سے بچ جاؤ. خطرات سے بچنے کا نام ہے تقویٰ. تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ تقویٰ کس چیز کا نام؟ پڑھتے کس لیے ہیں آپ؟ تاکہ خطرے سے بچیں. تجربہ کرتے کس لیے ہیں آپ؟ تاکہ آئندہ غلطی میں مبتلا نہ ہو. ایک مومن کی شان یہ بتائی گئی ہے کہ مومن نادان نہیں ہوتا، مومن احمق نہیں ہوتا، مومن غیر عاقل نہیں ہوتا. دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایمان اور جہل جمع ہونے والی چیزیں نہیں ہوتی. ایمان اور جہل، ایمان اور حماقت، ایمان اور سفاہت، ایمان اور بے عقلی جمع ہونے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ متضاد چیزیں. جہاں ایمان ہوگا وہاں جہالت نہیں ہوگی، جہاں ایمان ہوگا وہاں فراست ہوگی، عقل ہوگی، علم ہوگا، نور ہوگا، تاریکی نہیں ہوگی. توجہ ہے؟ یہ سب معیار، یہ سب اس لیے نہیں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس بات کرتے ہیں سوچتے رہے. ہم سب اپنے گریبان میں چھاپ کے دیتے ہیں کہیں کوئی جہالت کی تاریکی تو نہیں ہے. ہے تو جتنی جہالت کی تاریکی ہے اس کا مطلب اتنا ہی ہم ایمان سے دور ہیں. سادہ سی بات. اور جتنی روشنی ہے اتنے ہی ہم ایمان سے قریب ہیں. تو ایمان سے اور قریب تر ہونے کی کوشش کریں، ایمان کے مراتب میں کمال کے درجے تک پہنچنے کی کوشش کریں. میرے یہ جملے سن کے بعض حضرات کہتے ہیں کہ مولانا بعض اچھا کرتے ہیں، مجلس نہیں پڑھتے. کیا آپ کا تصور مجلس یہی ہے؟ جب آپ صاحب تقویٰ نہیں ہوں گے تو صاحب عصمت کی محبت آپ کے دل میں آئے گی کیسے؟ محبت نہیں کر پاتے اس کی وجہ کیا ہے؟ سب کچھ پڑھتے ہیں، صحیح صحیح کتابوں میں صحیح صحیح باتیں لکھی ہوئی ہیں، سب کچھ پڑھتے ہیں، پیغمبر کے مراتب، اہل بیت پیغمبر کے مراتب، اہل بیت پیغمبر کے فوائل، سرکار سید الشہداء کی حیثیت سب لکھی ہوئی ہے، صحیح ترین کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. پڑھتے ہیں، دہراتے ہیں، سناتے ہیں، مگر حسین سے محبت کر نہیں پاتے. حسین سے محبت کر نہیں پاتے. جھکاؤ یزید کی طرف نظر آتا ہے. تقویٰ बाबा नहीं है। हुसैन की मोहब्बत किसी भी मासूम की मोहब्बत किसी गुनाहगार दिल में खताकार दिल में ठहर नहीं सकती। मासूम की ज़बान पर एक मोमिन की शान ये बताई गई है कि अल मोमिन ला युल्तब मिन जुहरिल मरतैन, एक सुराख से मोमिन दो बार नहीं कसा जा सकता, एक सुराख से दो बार नहीं कसा जा सकता। अल मोमिन कलीस, मोमिन होशियार होता है, मोमिन अकलमंद होता है, मोमिन होशियार होता है। इत्तकू फिरासत अल मोमिन, मोमिन की फिरासत से बचो। मोमिन की फिरासत से बचो, मोमिन की ये शान होती है, मोमिन की ये शान होती है। क्यों, कैसे, कौन मोमिन होता है? वो जो इल्म को जुज़्वे जान बनाए, जो इल्म की रोशनी में राह तय करे, जो तजरबे से अक्ल में इजाफा करे। तो तजरबे से अक्ल में इजाफा और इल्म से नूर जान में इजाफा होगा तो फिर हासिल क्या होगा? दुनिया और आखिरत दोनों जहान के खतरात से इंसान अपने को बचा लेगा। इसी बचा लेने का नाम है तक्वा। जो बचा लेगा वही कामयाब होगा, उसी कामयाबी का नाम है शरफ। हुसैन क्या कह रहे हैं? अशरफ अत्तक्वा, शरफ ही तक्वा। सलावत पढ़ने मोहम्मद चाहे वो रोजे आशूरा हो, चाहे जुलूस अज़ा हो, चाहे सड़क पे तबर्रुक बढ़ रहा हो, चाहे किसी इमाम बारगाह में तबर्रुक बढ़ रहा हो, हुसैन के चाहने वाले तो भूख और प्यास पे नाज करते हैं। ये तबर्रुक मजबूरी में नोशे जान करते हैं ताकि पानी पिए तो आंखों से आंसू बहे, दो लक्मा खा लें तो मजलिस में बैठने और मातम करने की ताकत रहे। बस इससे ज्यादा नहीं, दुनिया के तबर्रुक टूट के लेने वाले और हैं। वो शान दूसरों की है, वो आदत दूसरों की है। आपकी शान यह है कि मौला के जुमलों पर टूट पड़े, मौला के फिक्रे, मौला के जुमले, मौला की बातें। क्या कहा मौला ने? एक एक जुमला सुन लिया और बस वो आगे से गोशे जान बन जाए, याद रह जाए, दिल पे नक्श हो जाए। और आइंदा जब आप अपने यहाँ मजलिसें करें तो फिर उसका सुवेनियर बनवा के, लोहे बनवा के लोगों को हदिये में दें ताकि वो अपने ड्राइंग रूम में रखें या अपनी दीवारों पे आवेजा कर दें। और जब भी जहाँ उसमें लिखा हो ये फला जगह फला साहब की मजलिस का तबर्रुक था, आका हुसैन ने यह फरमाया, अली इब्ने अबी तालिब ने यह फरमाया, इमाम हसन ने यह फरमाया, जनाब ज़हरा ने यह फरमाया, हजरत सादिक अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया, तो एक मजलिस का तबर्रुक का तरोताज़ा रहेगा, कितनों को तरोताज़ा रखेगा, दिल और दिमाग में कैसी रोशनी भरता रहेगा। जो है अब गुफ्तगू आगे का देखिए, इमाम ने जो कुछ फरमाया, इल्म, अक्ल और शरफ और तक्वा की बात, ये तमाम बातें दरअसल इसमें नजरियाती और अमली सब पहलू सिमटे हुए हैं। ये सब निजाम हक को इख्तियार करने की बातें, निजाम हक, निजाम हक, निजाम हक का मजमून बहुत तहदार, बहुत वबील जय, बहुत अजीम मजमून है। ये आठ नौ तकरीरों में सिमटने वाला नहीं है। हम तो सिर्फ हर साल ही तकरीबन ये होता है कि फेहरिस्त गिना देते हैं, फिर कहते हैं चार बरस पर होमवर्क करते रहिएगा। निजाम हक अय्यूमियत हक सुभानहु व तआला, उस अल हय्युल कय्यूम में जो ये कायनात बनाई है, अल्लाह इस कायनात का निजाम कैसा है, इस कायनात का निजाम तकवीनी कैसा है, इस कायनात का निजाम तशरीई कैसा है, निजाम तकवीनी और निजाम तशरीई में कैसा तफावुक है, मुताबिकत कैसी है, मुआफिकत कैसी है, वहदत कैसी है, और अगर कहीं एतबारी फर्क है तो वो कितना फर्क है, बहुत दकीक मसूल है, बहुत दकीक। और इन मकामात पर जितना डूबते चले जाएंगे उतनी वहदत हक सुभानहु व तआला मुनकशिफ होती चली जाएगी। वहदत हक, अल्लाह एक है, वाहिद है, अहद है, फर्द है, समद है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। ये नहीं कि उसके अलावा कोई माबूद नहीं है बिलफिल, उसके अलावा कोई माबूद हो ही नहीं सकता, उसके अलावा कोई मुस्तहक इबादत हो ही नहीं सकता, और उस एक मुस्तहक इबादत का सानी कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। ये नहीं कि सानी बिलफिल कोई नहीं है, नहीं, सानी हो ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि वही अल हय्युल कय्यूम। इन दोनों मतालिब की दलील इसमें है। क्या दो मतलब? एक ही कि वो एक है और वही है, दूसरा कोई नहीं है और नहीं हो सकता, ये एक मतलब। दूसरा मतलब उसका सानी कोई नहीं है और ये नहीं है कि नहीं है, नहीं हो सकता। ये दो मतलब, दो बहसें हैं, वादे है, यानी वो शुभ है, इतने कमूना की कहीं गुंजाइश नहीं है। नहीं है कोई सानी और नहीं हो सकता, वही एक है और कोई और हो नहीं सकता। ये दो बहसें हैं, वहदत और शिर्क। शिर्क मुमकिन नहीं है, वहदत पर हक। इन दोनों बहसों की दलीलें, इन दोनों बहसों की दलीलें अल हय्युल कय्यूम में। कितनी तवील बहस है अल हय्युल कय्यूम में। फिर इस अल हय्युल कय्यूम में जितनी दकीक, जितनी रकीक, जितनी नफीस, जितनी बारीक अकली, इल्मी, इरफानी, फलसफियाना, हकीमाना और जितनी शफाफ अमली बहसें हैं, वो सब कुरान मजीद ने किस अंदाज से खोली है, आगे एक एक परत खोलता चला गया है। क्या वो ये है कि फरमाता है अल हय्युल कय्यूम को समझना हो तो ये समझो ला तअखुदुहु सिनतुन वला नौम, उसे न नींद आती है ना उमदा है। क्यों नींद नहीं आती, क्यों नहीं उमदा? इसलिए कि वो कय्यूम है। वो कय्यूम क्यों है? इसलिए कि ना उसे नींद आती है ना वो उमदा। संभाल सकते ऊंघ जाए, एक जरा पलक झपक जाए, एक जरा ऊंघ जाए तो दो शीशे के जर आप नहीं संभाल सकते। अगर वो ऊंघ जाए कायनात संभलेगी? नहीं संभल सकती ना। तो वो ही कयूम है। क्यों? इसलिए कि वो न ऊंघता है न सोता है। वो ये उस दावे की दलील, यानी दावा और दलील, दावा और दलील, दावा और दलील, एक के बाद एक क्या तसलसल है कलाम में हक में। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस्समावाति वमा फिल अर्ज। उसी के लिए है जो कुछ आसमानों और जमीनों में है, उसी के लिए है, उसी का है। ये लहू इसमें मिल्क भी है, मुल्क भी है, उसी का है और उसी के लिए है। ये तीसरी दलील है कयूमियत की। कयूम कौन होगा? संभालेगा कौन? जो मालिक होगा। जो मालिक नहीं होगा वो कुछ नहीं संभालता। आपका घर कभी नौकरों के सहारे चलता है? और जो नौकरों के सहारे घर चलाना चाहते हैं उनका घर उजड़ जाता है। ठीक है ना? घर संभालता है या मालिक, या वो जिसे मालिक ने मालिक बना दिया हो?
Oh.
जो मालिक नहीं है वो मालिक को छोड़ के किसी को मालिक समझे, ये शिर्क है। जो मालिक नहीं है वो मालिक को न पहचाने और किसी और को मालिक जाने, यही कुफ्र है, यही शिर्क है। जब मालिक खुद किसी को मालिक बनाए तो शिर्क नहीं है, तौहीद महफूज रहती है। और जो मालिक नहीं है वो उसी को मालिक समझे जिसे मालिक ने मालिक बनाया है, तो ये शिर्क नहीं है। अब किसी ने मालिक बनाया या नहीं, हमसे न पूछो, कुरान से पूछो। इन्ना वलीयकुम अल्लाह व रसूलुहु नबीन आमनु الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون। बस तुम्हारा वली अल्लाह है, ये कह के खामोश नहीं हुआ। लहू माफिस समावाते व माफिला, जो कुछ जमीनों और आसमानों में है, जो कुछ आसमानों और जमीनों में, सब उसका है, सब उसके लिए है, वही मालिक है, वही वली है। मिल्क उसी के लिए साबित, मुल्क उसी के लिए साबित। मिल्क और मुल्क का फर्क मालूम है ना? मिल्कियत होती है चीजें, मुल्क मिल्कियत पर इख्तियार होता है। लंबे चौड़े जमीन के रकबे को मुल्क नहीं कहते, उस पर इख्तियार को मुल्क कहते हैं। आपके यहां मिल्क ही मिल्क है, मुल्क शायद नहीं आए। जब बेचारगी है, अहले तौहीद अजीब तरह के शिर्क में मुब्तला हो गए हैं। अहले तौहीद अजीब तरह के शिर्क में मुब्तला हो गए हैं। तवज्जो है, मिल्क जिसकी हो उसी का मुल्क हो। ये पूरी कायनात मिल्क अल्लाह, पूरी कायनात मुल्क अल्लाह का, ठीक है। लहू माफिस समावात व माफिला, क्योंकि वही मालिक है, वही मुख्तार, वही कयूम है। अब उसकी कयूमियत का तकाजा यह हुआ कि उसने विलायत जो उसकी जात में मुनहसर थी, हर तरह की विलायत, हर तरह का इख्तियार, हर तरह का इख्तियार उसी की जात पाक में मुनहसर था। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह अलामती अंदाज समझिएगा कि इन नमा में गोया पांच हर्फ है। नून नून मीम अलिफ, नून दो बार है ना, उसमें तशदीद है ना। फिर बार दोहरा लीजिएगा, पांच मरतबा कर बस। वली तुम्हारा अल्लाह है, तो आगे उसने फिर उसका यहां भी नहीं लगाया। रसूल और उसका रसूल वो भी वली है, यानी मालिक ने एक को मालिक बना दिया। मालिक ने मालिक बना दिया। अब मालिक ने मालिक जब बना दिया तो हम इन्हें मालिक समझ के कुछ मांगे तो कौन सा शिर्क है?
दोनों ने साबित किया कि मालिक ने किसी और को मालिक बनाया है।
किस तरीके से इनके बस में क्या क्या नसीब होता है। तरकीब बहस याद रखिएगा, तौहीद के साथ नबूवत का जिक्र होता है और नबूवत के साथ इमामत का जिक्र होता है। तरकीब महफूज रहनी चाहिए। एक शख्स आता है और हिदायत की मिसाल देने की जरूरत इसलिए नहीं है कि सब जानते हैं कि हमें हिदायत को रसूल ही मिली, उन्हीं के जरिए से मिली, लेकिन और बातों में बहस शुरू हो जाती है। एक शख्स आता है, उसने दुआ अजीब व गरीब अंदाज से, जाहिल नादान, इसीलिए दस्ते दर जोड़ के बात कर रहा हूँ, जहल और ईमान जमा नहीं हो सकते, ये भी मैंने कहा था। और अगर कहीं जहालत है तो उसे दूर करने की कोशिश कीजिए, अगर जहालत दूर नहीं की तो खुदा ना खास्ता ईमान दूर ना हो जाए। होशियार होशियार होशियार, इंतबाह है आपके लिए, इंतबाह। अगर आपने जहालत दूर करने की कोशिश नहीं की तो कहीं ईमान आपसे रूठ ना जाए। ईमान वहीं रहेगा जहाँ इल्म की रोशनी हो, इल्म की शमा रोशन हो, इल्म का चराग जल रहा हो। तो जाहिल इंसान की दुआ पूरी नहीं होती। खूब बहस होगी मेरे इस जुमले पर, नाराज हो जाएंगे बहुत से लोग, आस्तीनें उलट लेंगे। डरो तो सही अपने जहल से, नफरत तो करो जहालत से। जाहिल इंसान इबादत करता है, उसकी इबादत की कोई कीमत नहीं है। 70 साल एक जाहिल इबादत करे और 1 घंटे एक आलिम बैठ के फिक्र करे, इस आलिम की फिक्र उस जाहिल की इबादत से अफजल है। 1 घंटे की आलिम की इल्मी रियाजत आबिद की, जाहिद की, जाहिल आबिद और जाहिद की 70 साल की इबादत से अफजल है। अफजल ही हकीकत है। इसलिए जाहिल हजरात रात रात भर जाग कर जो चिल्ला कशी फरमाते हैं उसको गुरूर ना करें, गुरूर ना करें, नाज ना करें, कुछ नहीं। मैंने मिसाल दी थी ना कि बिस्मिल्लाह भी सही पढ़ने आती नहीं, अमलियात पर नाजा है। और एक साहब तो मुझसे पूछ रहे थे, मुझसे कहने लगे मैं नमाज शब पढ़ पढ़ के आपके लिए बद्दुआ करूंगा। मैंने कहा कि नमाज शब दुआ करने के लिए है, बद्दुआ करने के पसंद बादशाह है। जो भी चापलूसी की बातें करे अल्लाह उसकी बातों में आ जाता है। ऐसा नहीं है, अल्लाह देखता है कि ये इबादत करने वाला जाहिल है कि आलिम। जाहिल अपनी इबादत पे नाजा ना हो जब तक कि इल्म ना हो उसके पास, आलिम अपने इल्म पर नाजा ना हो जब तक कि अमल ना हो उसके पास। फजीलत बख्शी गई है वो कौन सी इल्मी रियाजत है? बेअमल की इल्मी रियाजत नहीं, बाअमल की इल्मी रियाजत। अमल हो, तक्वा हो, उसके बाद उसके साथ साथ इल्मी तफक्कुर हो, ठीक है? तो बहरहाल ये सब बातें याद रखने की हैं, वाह-वाह करके लौटा के न चले जाए। याद रखिएगा, एक साहब ने दुआ की और जोहर का उनको गलबा हो गया। जाहिल पे जब जोहद तकवा का गलबा होता है तो वहीं से खारिजियत पैदा हो जाती है। जब जाहिल पर जोहद तकवा का गलबा होता है तो वहीं से खारिजियत भी पैदा हो जाती है। इल्म मारिफत, अब जनाब वाला पता नहीं क्या क्या दुआ करते रहते, जैसी समझ वैसी दुआ, और इसीलिए दुआएं पूरी नहीं होती। आप अपनी समझ से दुआ करते हैं, वो अपने इल्म से दुआ पूरी करता है। हम अपनी नासमझी और जहालत से हम अपनी बेबसरी और बेबसीरती से दुआ करते हैं, वो अपने इल्म और हिकमत से दुआएं सुनता है और पूरी करता है। तवज्जो है, इसलिए जब दुआ पूरी ना हो तो शुक्र करें, दुआ पूरी हो जाए तब तो शुक्र आप करते ही हैं, कहने की जरूरत नहीं है। जब दुआ पूरी ना हो तब भी शुक्र करें और तौबा करें, समझ जाए कि कोई ऐसी ही दुआ थी जो खुद मेरे हक में बेहतर न थी, वरना मुमकिन नहीं है कि बंदे की कोई जरूरत हो और आका पूरी न कर। ये सब नुकते निजाम हक के नुकते हैं, सब निजाम से ताल्लुक रखते हैं। बात जरूरत का पूरा होना, ठीक है, ये मुमकिन नहीं है कि बंदे की कोई जरूरत हो और आका पूरी ना करे। लोग मना करते हैं ऐसी बातें ना किया कीजिए, मगर मैं क्या करूं, एक जुमला कह दूं, जो होगा देखा जाएगा। ये जुमला याद रखिएगा कि मुमकिन नहीं है कि बंदे की जरूरत, गुलाम की जरूरत, नौकर की जरूरत आपा पूरी न करे। आप साहिब शरफ हैं, आप साहिब हैसियत हैं, आपके घर के नौकर चाकर हैं, आप उनको तनख्वाह देते हैं नहीं देते हैं? कोई ऐसा साहिब हैसियत है कि वो मंजूर कर ले कि वो खा पी के आराम से सोए, उसका नौकर भूखा सो जाए? कोई है? अच्छा, कोई ऐसा है कि वो खुद आराम से सोए और चाहे तो उसका नौकर जेरे आसमान सो जाए? नहीं, ऐसा होता नहीं, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ये कैसे मुमकिन है कि कोई इमाम हुसैन का नौकर हो और भूखा सो जाए? जिन लोगों ने अपने आप को इमाम हुसैन की नौकरी में दिया है ना, वो इमाम हुसैन के तस्करे को जिनसे बाजार ना बनाए। इमाम हुसैन को वसीले तिजारत ना बनाओ, जिक्र मौला को वसीले तिजारत ना बनाए। अजीजा ने मोहतरम, आका अगर हुसैन है तो बहुत करीम आका है। हम आप जैसे अपने नौकरों को भूखा प्यासा नहीं देख सकते, तो अगर रिश्ता पक्का है, रिश्ता सच्चा है, अगर वाकई खुद को इमाम की गुलामी में दिया है, तो इमाम के तस्करे पे सौदेबाजी ना करें, इमाम के करम पे भरोसा करें। बहरहाल, मुमकिन नहीं है कि बंदे की कोई जरूरत हो और आका पूरी ना करे। इसलिए अगर कोई जरूरत आप समझ रहे, हम समझ रहे कि हमारी ये जरूरत है और हम दुआ भी कर रहे हैं, दिन रात दुआ कर रहे हैं, पूरी नहीं हो रही है, इसका मतलब कि हमारी गलत फहमी है, हम गैर जरूरी को जरूरी समझ रहे हैं। वो हमारी जरूरत है नहीं, इजाफी जरूरत बना रखी है हमने, हमारी अकल नाकिस है, वो समझता है कि क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है। बहरहाल, तो हमारी दुआओं के अंदाज भी अलग होते हैं। अब एक साहब ने दुआ कर ली, क्या नाज़े बंदगी था जनाब का, वो भी नाज़े बंदगी जहालत असास। उन्होंने ये दुआ फरमाई, या अल्लाह जो कुछ मुझे वहां अजाब होना है वो यही दुनिया में हो जाए, ताकि मैं वहां सुरखुरु रहूं। कभी किसी के जहन में आ सकती है ये बात? अब जनाब वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुबतला हो गए, सर से पैर तक फोड़े, कुंसियां, दर्द, तकलीफ, जख्म, चलने फिरने से आजिज, अरब के बद्दुओं में से हिसाब थे। बद्दुओं की अकल ही क्या, मकल अकल थी ना आज अपने आपको जनाब वाला, उनके अजीज अबेबा उन्हें उठा के पैगंबर की खिदमत कर लिया। हुजूर ने और कहा कि हुजूर ये देखिए बीमारियों में मुबतला है, सर से पैर तक फोड़ा हो रहा है। हुजूर ने मुस्कुरा के पूछा, तुम्हें दुआ क्या की? दुआ उसने कब की थी, कहां की थी, किससे की थी? यानी दुआ की थी खुदा से, खबर मुस्तफा को है। आज की मजलिस में ये एक नुक्ता भी समझ के उठे ना, तो मेरी मेहनत सवाल को बस वक्त तमाम हो चुका है और चंद मजलिसें हैं, तो कितनी शहादतें, किन किन शहादत तो की तरफ इशारा कर। नबी का मर्तबा बहुत बुलंद होता है, इमाम मासूम का मर्तबा बहुत बुलंद होता है, एक मोमिन मुत्तकी का मर्तबा इमाम मासूम जैसा नहीं होता। जनाब मुस्लिम इमाम मासूम नहीं है। कहा अपने बिरादर मुअज्जम जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना ज़ुल्फ़िकर अज़मी साहब का जुमला मैंने नकल किया था, मुस्लिम हुसैन के एतमाद का नाम है, मुस्लिम के हराने की शान क्या होगी, रसूल के बच्चे कैसे होंगे, तो मुस्लिम के बच्चे ऐसे हैं कि कातिल से जिंदगी की भीख नहीं मांगते, नमाज पढ़ने की मोहलत मांगते। आमतौर पर अशरे मुहर्रम में मुस्लिम के बच्चों का तस्करा नहीं होता, मगर मैं समझता हूँ कि मुस्लिम का तस्करा भी होना चाहिए और मुस्लिम के बच्चों का तस्करा भी होना चाहिए। इसलिए यहाँ इस अदाखाने में जो जिक्र की तरतीब थी उसे मैंने तब्दील करने की गुजारिश की। मैंने कहा कि आज की तारीख में यहाँ जनाब मुस्लिम के बच्चों का तस्करा होगा, कल इंशाल्लाह जनाब ज़ैनब के बच्चों का तस्करा, जनाब अली अकबर का तस्करा होगा, जनाब कासिम का होगा, जनाब अब्बास का होगा। 9 मुहर्रम को इंशाल्लाह उस नन्हे शहीद का तस्करा होगा। महसूस कर रहा हूँ, वक्त भी खत्म हो चुका है, बस इशारा कर रहा हूँ जनाब मुस्लिम के बच्चों की शहादत के वाकयात आप सब सुन चुके हैं, सबको मालूम है, बस एक बात की तरफ इशारा कर रहा हूँ, ये बच्चे हैं, कातिल सामने है, शमशीर औरिया सामने है, मोहलत किस किस की तलब कर रहे हैं, नमाज की हो। कातिल से मोहलत मांग रहे हैं नमाज के लिए, जिंदगी की भीख मांगना आर है इनके लिए, कातिल से कोई चीज की तलब करना जिल्लत है, मगर अल्लाह के जिक्र की मोहलत मांगना। और फिर बस तेजी से गुजर जाऊं चंद वाकयात की तरफ और इशारा करना चाहता हूं, क्योंकि आज 4 मुहर्रम में आमतौर पर रिवायती तौर पर बहुत से हजरात 4 मुहर्रम को हजरत जुहर का तस्करा सुनना चाहते हैं, और तस्करे हैं जो करने का जी चाहता है, मौका नहीं रहता, इसलिए मैं कई मतालिब जहन में है, बस एक एक दो दो जुमलों में इशारा करता है वो आगे बढ़ूंगा, लेकिन ये मौका देखें कि बच्चों ने नमाज पढ़ने की मोहलत तलब की, नमाज पढ़ी और हम तो सनाए इलाही की लज्जत वो थी कि हाथ उठे थे मुनाजात का सिलसिला जारी था, मुनाजात के दौरान बातिल ने एक भाई पर वार किया, कहते हैं कि एक भाई का सर कलम किया और उसका लाशा दरिया में डाल दिया। देखिए क्या मंजर है, कहते वो दरिया में लाशा डूबा नहीं, भाई का में चार मुहर्रम को हुर का तस्करा होता है और मैं हुर के तस्करे को बहुत अहम समझता हूँ, इसलिए अहम समझता हूँ। आप हजरात को मेरा ये जुमला याद होगा, हम जैसे गुनाहगारों के लिए, हम जैसे खाकी और खाकियों के लिए मासूमीन की सीरतें तो बहुत बुलंद है, हुसैन हम में से कोई नहीं बन सकता, हम में से कोई अकबर भी नहीं बन सकता, हम में से कोई कासिम भी नहीं बन सकता। मेरा जुमला याद होगा, मैंने कहा था हुसैन बनने के लिए फातिमा जैसी मां दरकार।
अहले बैत के घर के बच्चों के प्रियों को जगाया है, अहले बैत के बच्चों
लेकर आया, मेरे आमल से ये बच्चे सहम गए, डर गए, मौत का खौफ। खुदा से तौबा की, आका से माफी तलब की, आका ने सनद दी, और तुम दुनिया में भी हुर हो, आखिरत में भी हुर हो। और उसके बाद हुर ने इमाम पर जाने सारी का हक अदा किया, खुद था, बेटा था, गुलाम था, भाई था, और तन्हा नहीं आए थे। और ने सबसे पहले अपने बेटे को मैदान में भेजा था, बेटा जाओ फर्जंद रसूल पर जान निसार। बस खत्म कर रहा हूँ मैं, एक जुमला बहुत आहिस्ता से कहूंगा और आप देर तक गिरिया करेंगे। अपने बेटे को भेजा, बेटे ने बेपनाह जंग की, और उसके बाद जब जख्मों से चूर होकर हुर का बेटा घोड़े से जमीन पर आया,